ओम शांति। आज का यह क्षण साधारण नहीं है, क्योंकि जहां चिकित्सा सेवा बन जाए साधना, जहां डॉक्टर बन जाए आत्मिक मार्गदर्शक, वहीं से मानवता का सच्चा उपचार शुरू होता है। और हमारे बीच में ऐसी ही प्रेरणादायी आत्मा विराजमान है, हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई गुप्ता जी, मेडिकल साइंस के स्पेशलिस्ट और ब्रह्मा कुमारी परिवार के अनमोल रतन। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिसिन के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। बहुत अच्छी विशेषता जो हमने अनुभव की है, भाई साहब के अंदर बाबा के मुरलियों की गहराई से चिंतन करके तन मन को स्वस्थ बनाने की विधि सिखाते हैं। हमने जो नोट किया है, भाई साहब की जेब में हमेशा बाबा की मुरली रहती ही है। आपने प्रभावशाली रूप से 1998 से कैड प्रोग्राम और अनेकों कार्यक्रम देश विदेश में कराए हैं। सभी के दिल को आराम दिलाने वाले ऐसे हमारे दिलाराम बाप के बच्चे कहते हैं, आपका वक्तव्य सुनकर अब्दुल कलाम जी ने भी बहुत प्रशंसा की थी। ऐसे हमारे अमूल्य रत्न आज हमें प्राप्त हुए हैं। आपका जो आज का विषय है वो है अशरीरी निराकारी बीज रूप स्थिति। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही आत्मा अपने बीज रूप स्वरूप में शांत, शक्तिशाली और संकल्प रहित होती है। न कोई व्यर्थ सोच, सिर्फ श्रेष्ठ स्थिति। तो आपकी ऐसी अनुभव युक्त वाणी आज हमको प्राप्त होने वाली है। हम सब अपने मन को एकाग्र कर बैठेंगे और भाई साहब को सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। चलिए, हम आज के विषय पर मनन चिंतन करने से पहले, आज का विषय क्या है? अशरीरी निराकारी और बीज रूप स्थिति। इस पर मनन चिंतन करने से पहले चलिए सभी एक मिनट के लिए इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाइए। अपने मन बुद्धि को डिटैच करके मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो, कंबाइंड हो जाओ उस पावर हाउस से और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें। ओम शांति। ये तीनों स्थितियां, अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, निराकार स्थिति और बीज रूप स्थिति, ये तीनों स्थिति ही का बार बार हम मुरलियों में सुनते हैं। ये स्थिति सेम है या अलग अलग है? आप क्या समझते हैं? सेम है या अलग अलग है? अशरीरी, निराकारी और बीज रूप तीनों ही परम धाम की अवस्थाएं हैं, आत्मा की परम धाम की अवस्थाएं हैं। और कैसे इससे हमें क्या, इसका क्या अर्थ है? क्यों हमें तीनों अवस्थाओं की अलग आवश्यकता पड़ती है और क्या डिफरेंस है? और ये अवस्था बनाने के लिए, इस स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं? आज इसी बात पर हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आखिरी समय तो आ गया। कल की मूल्य आपने सुनी, हम सब कौन है? हम सब कौन है? राज दुलारे। परमात्म दुलार के पात्र हम आत्माएं हैं, राइट। एक राज्य, एक धर्म और एक का लॉ एंड ऑर्डर, कल की मुरली सुनी थी ना आपने, और फिर हमने शाम की मुरली भी सुनी, फिर आज सुबह की मुरली भी सुनी। कितनी बार याद आया होगा, बाबा कहते मुझे याद करो, मुख्य बात क्या है, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, है ना। कितनी बार आया होगा, क्यों बाबा बार बार ऐसे कहते हैं। कभी कोई पिता अपने बच्चों को बोलता है मुझे याद करो, कोई पति अपने पत्नी को बोलता है मुझे याद करो, माँ अपने बच्चे को बोलती है मुझे याद करो, कोई नहीं बोलता। वो क्यों बोलता है मुझे याद करो, क्योंकि जब जैसे जैसे हमने 63 जन्म में पाप कर्म किए हैं, विक्रम किए हैं, विकारों के वश होकर कर्म किए हैं, हमारे 63 जन्म में इतने सारे पाप कर्म इकट्ठे हो गए, विक्रम इकट्ठे हो गए। पाप कर्म और विक्रम में थोड़ा फर्क है, बाद में शेयर करेंगे टाइम मिलेगा तो। तो अब आत्मा को वापस घर जाने का समय आ गया है, 84 जन्म पूरे हो गए, वापस घर जाने का समय है। आज की मुरली में क्या सुना, मौत कहां खड़ा है, 5 किलोमीटर दूर, कुछ सामने खड़ा है ना, और कब आएगा पता नहीं। लड़ाई कहां है, लड़ाई सामने खड़ी है, एकदम सामने। मतलब देखो अभी तो आप एकदम देखते हो, एटॉमिक वेपन्स कभी भी ऐसे मोड में नहीं थे, थे कभी एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल में लगे हुए हैं, तैयार हैं, सिर्फ बटन दबाने की तैयार है। एक मुरली में आया था बाबा ने कि पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं, पांडवों की संपूर्ण स्थिति नहीं, और इसलिए यादव भी क्या कर, यूरोपवासी अपने क्या नहीं कर पा रहे, एटॉमिक वेपन्स को यूज नहीं कर पा रहे, विनाश रुका हुआ है, राइट। तो अशरीरी स्थिति निराकारी और बीज रूप, क्यों हमें चाहिए अशरीरी अवस्था, ये समझ लीजिए कि अशरीरी अवस्था, निराकारी अवस्था और बीज रूप स्थिति में ही हमारे पाप कर्म और विक्रम भस्म हो सकते हैं। और किसी भी अवस्था में, देह हमारी स्थिति में हमारे विक्रम विनाश नहीं होते, आत्मा की स्थिति में हमारे विक्रम विनाश नहीं होते, विधेय स्थिति में भी हमारे विक्रम विनाश नहीं होते, सिर्फ इन 3 स्थितियों में हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अशरीरी स्थिति से क्या विनाश होता है, देखिए हमारे साथ जो मनुष्य है ना, मनुष्य के दिल में क्या समाया होता है, मनुष्य का खाली दिल में नहीं, मनुष्य के दिल में, बुद्धि में, मन में और संस्कारों में और तन में भी क्या समाया होता है, देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क और देह अभिमान के, देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके रग रग में समाया हुआ है, दिल में भी है, बुद्धि में भी है और मन सारे शरीर में फैला हुआ है, उसमें भी है, संस्कारों में भी, संस्कार ड्रेस है, बाहर दिखाई देते हैं संस्कार, और तन के भी, आंख में, नाक में, कान में, मुख में, सब में देखो विकार समाये हुए, नहीं समाये हुए, देवान भी है, देवीमान भी है, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव दिखाई देते हैं, व्यवहार में दिखाई देते हैं। और इन 5 विकारों के वश जब हम कर्म करते हैं तो हमारे अंदर से 7 एनर्जी, आत्मा की 7 एनर्जी, ज्ञान तथा सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां क्या हो जाती हैं, भस्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, उसकी डिग्री कम होती जाती है, राइट। और उससे हमारे अंदर आसुरी संस्कार पैदा होते हैं, आसुरी संस्कार अर्थात कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं जो कि हमें स्वभाव भले खत्म हो गया हो, जैसे ब्राह्मणों में अब आसुरी स्वभाव नहीं रहा है, काम विकार नहीं रहा है, ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, राइट, काम क्रोध भी लगभग खत्म हो गया है, हो गया नहीं हो गया, क्या है बाकी, जिनका क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया हाथ उठाओ जरा, पर बहुत थोड़ों का खत्म हुआ है, 15% का खत्म हुआ है, तो क्रोध चलो मानो क्रोध भी प्रेम खत्म कर लिया, मोटा मोटा क्रोध खत्म कर लिया, राइट, लोभ भी खत्म हो गया, अब इच्छा नहीं है ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की, चीजें इकट्ठी करने की नहीं इच्छा नहीं है, और मोह भी खत्म हो गया, मोह भी है थोड़ा थोड़ा है, मोह भी लगभग खत्म हो गया, मोटे रूप में तो खत्म हो गया, अहंकार भी लगभग मोटे रूप में खत्म हो गया, ठीक है। किंतु आज भी कल की मुरली में भी था रॉयल आलस्य और अलबेलापन, क्या है हो ही जाएगा ना। अलबेलापन क्या है, कर तो रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, तो वो आलस्य और अलबेलापन ये क्या है, आसुरी आदत पड़ गई हमारी। आज ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन कौन सा, ये संस्कार है, सबसे लास्ट में जाता है आलस्य। मैं परमात्मा को याद नहीं कर पा रहा हूं, या बैठा हूं 40-45 मिनट याद करने के लिए, कि तो मेरी 5 मिनट ही लवलीन अवस्था है, 2 मिनट 5 मिनट में से 2 मिनट मेरी फिर क्या है, अशरीर स्थिति है, उसमें से आधा मिनट निराकार स्थिति है, और 0.01 सेकेंड क्या है, बीज रूप स्थिति है ना, इतनी भी नहीं होती कई बार तो मास्टर बीज रूप जो अशरीर स्थिति 1 मिनट होती है, ज्यादा समय विदेही स्थिति में रहते हैं, अर्थात सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में ही रहते हैं, उसे ही महसूस करते रहते हैं, उसी में टाइम पूरा हो जाता है। पर महाराज का एक भी विक्रम विनाश नहीं हुआ, विक्रम हुआ नहीं, पापकर्म हुआ नहीं, पर विनाश भी नहीं हुआ, क्योंकि हम अशरीर बने ही नहीं, हम निराकारी बने ही नहीं। तो आलस्य अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, जबकि आत्मा का गुण क्या है, आत्मा का आत्मा मन स्थिति में क्या होता है, अलर्ट, आत्मा सदा अलर्ट है, आत्मा सदा एक्यूरेट है, आत्मा गुण दर्शन, गुणों में व्यवहार करती है सबके। अब मैं अगर आत्मा मानी हूं, मुझे सबके गुण दिखाई देंगे, होली हंस के समान है हम, जिसको मोती दिखाई देते हैं, 1000 कंकड़ पड़ेंगे तो 2 मोती बीच में पड़े, 2 मोती दिखाई देते हैं, जरा भी कंकड़ नजर नहीं आते। और एक बगला भी होता है, बगले के सामने 1000 मोती पड़े हों किंतु बीच में 2 कीड़े पड़े हों, लार्वा पड़े हों, तो उसको मोती नजर नहीं आते, क्या नजर आता है, सिर्फ कीड़े दिखाई देते हैं। तो आत्मा अलर्ट है, आत्मा की स्थिति अलर्ट है और एक्यूरेट है। और जब हम देहभिमानी बन जाते हैं, 5 विकारों के विषय कर्म करते हैं, तो हमारे आदत पड़ जाती है आलस्य करने की, और अलबेलापन केयरलेसनेस की आदत पड़ जाती है, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। दूसरा गुण दर्शन की बजाय दोष दर्शन, जिससे घरों में झगड़ा है, दोस्तों में प्यार खत्म हो गया, एक व्यक्ति दूसरे के अवगुण देखता है, पति पत्नी के अवगुण देखता है, पत्नी पति के अवगुण देखती है, बच्चे माँ बाप में अवगुण देखते हैं, माँ बाप बच्चों में अवगुण देखते हैं, है ना, उनको बोलते भी हैं, व्यवहार में भी लाते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट में अवगुण देखती है और गवर्नमेंट पब्लिक में अवगुण देखती है ना। तो ये हमारी आदत पड़ गई ना, फिर बदलने की भावना, जबकि आत्मा की स्थिति क्या है, रहम दिल है, दूसरा जब भी किसी विकार के वश होगा, गलत करेगा, उस पर रहम आता है, आता है नहीं आता, आत्मा की स्थिति में रहम आता है ना। तो किंतु हम जब हम देहभिमानी बन जाते हैं, 5 विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, तो हमें उसको माफ नहीं कर पाते, पावर टू फॉरगिव खत्म हो जाती है। आत्मा की स्थिति की नेचर क्या है, निश्चय और विश्वास, क्योंकि पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरी इंडस्ट्री, पूरा देश, पूरा विश्व निश्चय और विश्वास के आधार पे चलता है, राइट। इतना बड़ा यज्ञ हमारा दादियों ने, बाबा ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने कैसे चलाया, आज भी हमारी बहनें, बड़ी दीदियां और दादाएं चला रहे हैं ना, कैसे चला रहे हैं, निश्चय और विश्वास के आधार पे, एक दूसरे पर निश्चय है, विश्वास है। क्योंकि जैसे ही देहभिमान आता, संशय बुद्धि बन जाते हैं, शक करने लगते हैं और विश्वास के बजाय अनुमान लगाने लगते हैं, राइट। ये हमारी आदत बन गई है, एक दूसरे पे निश्चय ना रखना, संशय शक करना, अनुमान लगाना। फिर जो हमने कल सुना था, क्या सुना था, हमारा ऑर्डर कौन सा है, हमारा लॉ कौन सा है, लॉ कौन सा है, लॉ बेफिक्र बादशाह। आत्मनि अवस्था कैसी है, एकदम बेफिक्र बादशाह है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, निश्चिंत अवस्था है और निर्भय है। किंतु जैसे हम देह विमान में आके 5 विकारों के वश कर्म करते हैं, तो हमारे के अंदर क्या पैदा हो जाता है, चिंता भय, चिंता एक आदत बन गई है, डरना एक आदत बन गई है, बनी नहीं बनी, ये संस्कार हो गया है। ब्राह्मणों में भी संस्कार है जब जो बिल्कुल निर्भय बन गए, हाथ उठाओ, जो निर्भय बिल्कुल बन गए, जो बिल्कुल निर्भय, कुछ भी हो जाए, शेर भी सामने आ जाए तो भी डर ना लगे, अर्थक्वेक आ जाए डर ना लगे, वहीं आराम से बैठे रहे बस बाबा की याद में। ऐसा कोई बना नहीं बना, बताओ बने? बनना चाहिए ना, मैं आत्मा हूं, मरने की बात ही नहीं, डरने की बात ही नहीं है, राइट। तो चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद और भी, आत्मा में गंभीरता धैर्यता होती है, आत्मा स्थिति धैर्यता वाली। हमें पता है एक बच्चा भी छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, एकदम तो नहीं बड़ा होता, अभी 2 किलो का था, 2.5 किलो का थी, अभी एकदम 70 किलो का हो गया, ऐसा होता है क्या? पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होता है, हर चीज धीरे धीरे डेवलप होती है, राइट। और ये आत्मा स्थिति की विशेषता है, क्योंकि जैसे देवी मान के वश होकर हम कर्म करते हैं, कर्म पाप विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर अधैर्यता पैदा होती है, जल्दबाजी पैदा हो जाती है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, सबकी सलाह नहीं, जैसे मैं कहूं ऐसे ही होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और आत्मा स्थिति विश्व कल्याण की स्थिति है, विश्व कल्याणकारी स्थिति है, और जैसे ही हमारे अंदर देहाभिमान के वशों के पाप कर्म के विकारों के वशों कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो जाता है। तो ये 10 आसुरी संस्कार मुख्य, इसके फिर 10-10 और भी हैं आगे। तो ये जो है अशरीरी स्थिति से क्या फायदा होता है, जितना हम देह से अलग, अशरीरी स्थिति क्या है, देह अलग है मैं आत्मा अलग हूं, देह से अलग अशरीरी परम धाम में मैं अशरीरी आत्मा अशरीरी बाप से कंबाइंड, परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। तो जैसे हम अशरीरी, माना क्या, परम धाम कैसी स्थिति है, जहां संकल्प सल्पों का संकल्प से परे की दुनिया है, जहां संकल्प नहीं चलते हैं, इस दुनिया में संकल्प चलते हैं, और सूक्ष्म वतन में 1 से 3 संकल्प चलते हैं, इस दुनिया में 4 माना 4 और 4 से ज्यादा संकल्प चलते हैं, क्योंकि ABCD है ना, ज्ञान क्या है, सत्य की समझ ABCD है ना। इस दुनिया में हम ड्रामा को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, ड्रामा के चक्र भी में फंसे रहते हैं, और जैसे ड्रामा को फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारी 3 की स्थिति अर्थात ABC आत्मा बाबा संबंध, हम बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहे होते हैं विदेह स्थिति में, राइट। हम विदेही हैं, मतलब बाबा से सब कंबाइंड है, और हम आत्मा क्या बन करके, स्वराज्य अधिकारी बन करके, अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति में बाबा से कंबाइंड होकर के अनुभूति कर रही है, अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य है, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है, आत्मा अतीन्द्रिय सुख आनंद में बाबा से कंबाइंड है, 5ों कर्मेंद्रियों का अधिकार है, इंद्रियों का सुख नहीं ले रहे, आत्मा और परमात्मा के मिलन के सुख में समाये हुए हैं, वो है विदेही अवस्था। और जब आनंद की स्थिति, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति 3 से 2 की स्थिति है, 3 अर्थात संबंध में एक एक संबंध का अनुभव करते, उस संबंध के सभी संबंधों के विषय के सार में समा जाते हैं, सर संबंधों के महीन सार में स्थित होने लगते हैं, और आनंद की स्थिति लवलीन स्थिति है, नदी सागर में समा के सागर बन गई, सागर हो गई, अर्थात वो 2 से 1 की स्थिति है, 2 मना आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा के मिलन को ऐसी स्थिति लवलीन स्थिति, उसमें से भी होते 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 उसमें लवलीन स्थिति होते 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 समा गई, 1 की स्थिति आ गई, राइट। और देही मान स्थिति क्या है, देही मान स्थिति है हम जिस देह में रहके, सारी दुनिया देह अभिमान में है, 810 करोड़ लोग इसमें कहते हैं, हम लोग लगभग 810 करोड़ है धरती पर, इसमें मनुष्य 810 करोड़ में से 809 करोड़ 90 लाख मनुष्य कांच किसमें है, देह अभिमान में खोए हुए, देह अभिमान के से पैदा होने 5 आसुरी स्वभाव और 10 आसुरी संस्कार, उनके 100 उनके बाल बच्चे उसी में खोए हुए, ठीक बात है। और हमें 10 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम देह हमारी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात इस देह में रहते हुए, आत्मा इस देह में रहते हुए जो बाबा ने हमें सिखाया, ABCD सिखाया, सत्य की समझ दी, उसी को अंदर अंदर रिवाइज और रियलाइज करते हैं बार बार, दिल में अपने बाबा को बिठा के, क्योंकि हमारा शिव बाबा ने हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और जैसे ही शिव बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, अर्थात मेरे दिल में कौन आ गया, अभी मनुष्यों के दिल बुद्धि मन और संस्कारों में और तन में रोम रोम में क्या समाया हुआ है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, देवान देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ और देवमन से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, 10 आसुरी संस्कार, उनके 100 बाल बच्चे, समाये हुए नहीं समाये हुए? किंतु हम ब्राह्मणों के दिल में क्या समाया हुआ है? हम ब्राह्मणों के दिल में कौन सा क्या समाया है बताओ? हम ब्राह्मणों के दिल में हमारा दिलाराम बाप समाया हुआ है, वही हमारा सब संबंधी है ना। तो दिला हम बच्चों के दिल में कौन समाया है? कौन है? जैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है हमारे दिल में कौन है? दिल का मतलब, दिल ये वाला दिल नहीं है, तो फिजिकल दिल है, शरीर का दिल है, आत्मा का दिल यहां है, मुझे आत्मा का दिल यहां है, चेतना जिसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, मैं आत्मा यहां हूं। और उस दिल में आत्मा का जो दिल है, सेंटर पॉइंट है, उसमें जो है वो कौन है? शिव बाबा समाया, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सच्चे स्नेह का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर। इसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, बार बार महसूस करो, इसी को बार बार रिवाइज करना, रियलाइज करना, इसको बोलते देहीयमान स्थिति। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है, इस दिव्य ब्राह्मण जन्म की स्मृति को इमर्ज रखना है कि बाबा मेरे दिल में समाया हुआ है। बाबा को और कोई स्थान अच्छा लगता है, मेरा दिल ही अच्छा लगता है, मेरे दिल में बाबा समाया हुआ। हमारे दिल में बाबा है कि नहीं बताओ? जिनके दिल में बाबा समा गया हाथ उठाओ। मेरे दिल में भी समाया है, ऊंचा आदानी ऊंचा है ना, तो हमारे दिल में बाबा समाया हुआ है। इसी को बोलते सच्चा ब्राह्मण। आज बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण बने बगैर, सच्चा ब्राह्मण बने बगैर बाप से पूरा वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा क्या है बाबा का? वर्तमान वर्षा और भविष्य वर्षा। वर्तमान का वर्षा कौन सा है? ये सातों एनर्जी, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ पूरी समा जाती है, पवित्रता हमारे जीवन में समा जाती है, शांति हमारे जीवन में समा जाती है, और सच्चा स्नेह हमारे जीवन में समा जाता है, अतिंद्रिय सुख आनंद और आठों शक्तियां हमारे अंदर समा जाती है। ये वर्तमान का वर्षा है। जितना ये वर्षा हम प्राप्त करते हैं, उसी आधार पर भविष्य हम क्या बन जाते हैं? राज्य अधिकारी बनते हैं, राइट? ये वर्षा कम तो वो वर्षा भी कम। तो सच्चे ब्राह्मण में दिल में सदा शिव बाबा समाया हुआ है, बाप दादा ब्रह्मा बाबा भी समाया हुआ है, मस्तक में शिव बाबा है, आंखों में ब्रह्मा बाबा समाया है। अगर मस्तक में शिव बाबा माना हर समय हमारी, हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से कंबाइंड रहते, निराकारी आत्मा मन के निराकारी बाप से कंबाइंड है, तो हम ब्रह्मा बाबा हमारी आंखों में समाया रहता है, हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं कर सकते। अगर निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड नहीं है, तो हम ब्रह्मा बाबा हमें समझ नहीं आता है, मनुष्य ही दिखाई देते हैं। कभी गांधी जी दिखाई देते हैं, कभी विवेकानंद दिखाई देता है, कभी दयानंद दिखाई देता है, कभी गुरु नानक दिखाई देता है ना, जो दुनिया के हिसाब से आदर्श थे, कभी महात्मा बुद्ध दिखाई देता है, कभी ओशो दिखाई देता है ना, कभी रामदेव जी दिखाई देते हैं, कभी कोई व्यक्ति दिखाई देने लगता है। अगर शिव बाबा से कंबाइंड है, निराकारी आत्मा में के निराकार बाप से कंबाइंड है, तब हमें ब्रह्मा बाबा हमारे हर समय एक एग्जाम्पल बन के हाथ पकड़ के साथ चलता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, राइट? तो हमने बात करते 3 से 2 की स्थिति क्या है? अतिंद्रिय सुख की स्थिति है, 2 से 1 की स्थिति आनंद की स्थिति है, लवलीन अवस्था है, और 1 से कम हो जाए तो देहीमानी स्थिति क्लियर होगी ना। देहीमानी माना हम चलते फिरते, उठते बैठते, दिल में बाबा समाया है, और जब जैसे ही बाबा ने कहा, जैसे तुम्हें दिव्य ब्राह्मण जन्म देता हूं, तो मेरे अंदर मैं तुम्हें दो वो देता हूं गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट है ब्राह्मण जन्म की, कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। जैसे ही बाबा को दिल में हम रिवाइज और रियलाइज कर रहे होते हैं, अर्थात मनन चिंतन मंथन सिमरण कर रहे होते हैं बाबा के महावाक्यों का, क्योंकि बात उसकी समझ में आती है जो हमारे दिल में होता है, याद उसकी आती है जो हमारे दिल में होता है, राइट? दिल में मुझे, अगर मेरा बेटा मुझे दिल में बैठा है, मेरी युगल दिल में बैठी है, या मेरा दोस्त दिल में बैठा है, या मेरी मां दिल में बैठी है, तो किसकी याद आती है? उन्हीं की याद आती है। या बैंक बैलेंस दिल में बैठा हुआ है तो सारा दिन बैंक बैलेंस ही याद आता है, नहीं ऐसा होता? नहीं होता। या सेंटर ही दिल में बैठा हुआ तो क्या होगा? सेंटर ही याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा, राइट? हाँ बाबा का सेंटर है फिर बाबा याद आएगा, राइट। तो ये समझना है, तो इसको हम देही मानी स्थिति कहते हैं। जितना हम बाबा और दिल में बाबा बैठा तो बाबा की मुरली अंदर है, इसे बोलते सच्ची दिल साफ दिल। सच्ची दिल जिस दिल में बाबा है वो सच्ची दिल है, और जिसमें बाबा के महावाक्य हैं बाबा की मुरली बजती रही, सारा दिन बजती रहती, सारा दिन बजती रहती है। बाबा की मुरली सुनने के लिए नहीं है, बनने के लिए है, वो सारा दिन बजती रहती है। तो वो है, तो इस तरह से जब हम देही मानी स्थिति, तो देही मानी जितना मुरली का जूस निकलता जाता है ना, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन रिवाइज और रियलाइज, रिवाइज माना सच्चे दिल से महसूस करते हैं बाबा मुझे बोल रहा है, परमात्मा मुझे बोल रहा है बच्चे तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें घड़ी घड़ी हर सेकंड हर श्वास हर सेकंड हर संकल्प में मुझे याद करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चाहे विलायत जाओ चाहे कहीं भी रहो, हर समय मुझे मेरी याद में रहो, सो तो मेरे साथ सो, खाओ तो मेरे साथ खाओ, पानी पियो तो मेरे साथ पियो, हर समय मेरे साथ मुझे साथ रहो। तो चलते फिरते जब बाबा की इन बातों को हम बार बार रिवाइज रियलाइज कर रहे होते हैं, सच्चे दिल से महसूस कर रहे थे मुझे बाबा मुझे ऐसा करना है, बाबा बन के ही दिखाऊंगा, बाबा मुझे आपको प्रत्यक्ष करना ही है। देखो शिव बाबा ने क्या किया, देखो दादी गुलजार ने क्या किया ना, ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कंबाइन हुआ, शिव बाबा की मुरली का मुरली जो बाबा के महावाक्य पर 100% चला, फॉलो शिव बाबा को याद में रहा निरंतर, तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया और ब्रह्मा बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो गया, हुआ नहीं हुआ। गुलजार दादी ने किसको प्रत्यक्ष किया, बाप दादा को प्रत्यक्ष किया, बाबा बाप दादा आते थे गुलजार दादी में, और आज गुलजार दादी सब जगह प्रत्यक्ष हो गई है, सारा ब्राह्मण परिवार क्या बोलता है दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा को प्रत्यक्ष किया ना, तो आज दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी सभी दादियां कितनी प्रत्यक्ष हुई, हुई कि नहीं हुई, सारा ब्राह्मण परिवार उनको बड़े मतलब गर्व के साथ अपने घर में फोटो लगाते नहीं लगाते उनके, ये हमारी दादी थी इसके साथ हमें अनुभव हुआ, ये दादी से अनुभव हुआ हमको, ये अनुभव हुआ हमको, ये मम्मा से हमको ये अनुभव हुए, नहीं होता, नहीं होता। आज उनके क्लासेस सुनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, करते हैं ना करते हैं। तो ये जो हमें ध्यान दे, तो देही मानी स्थिति क्या है ये, और आत्म मानी स्थिति उसका जूस है, राइट। तो देही मानी स्थिति होते होते हमारे आत्म मानी स्थिति बनते, आत्म मानी अर्थात हमारे पवित्रता आती जाती है, अर्थात हमारे व्यवहार में पवित्रता आने लगती है, आत्मा के गुण दिखाई देने लगते हैं, हम ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना सीख जाते हैं, कुछ भी हो गया, तन में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कह दिया, हमारी ग्लानी कर दी, हमारी ईर्ष्या द्वेष के वश, हमारा अपमान कर दिया, कुछ हमें किसी ने कुछ बात हो गई, कितनी बड़ी बात, नुकसान हो गया, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो भी विचार फुल स्टॉप लगा देते हैं, कोई बात नहीं, अपने को आत्मा समझ के अपने कार्य व्यवहार को संभालते हैं, जिम्मेवारी निभाते हैं, किंतु फंसते नहीं है, एकदम ड्रामा को फुल स्टॉप, कोई बात में भी फुल स्टॉप लगा देते, तो ज्ञान स्वरूप स्थिति महसूस होने लगती है, साक्षी स्थिति महसूस होने लगती है, पवित्रता हमारे जीवन में आने लगती है, व्यवहार में दूसरे को आत्मा समझ के भले पति पत्नी है पर आत्मा अपनी पत्नी को भी आत्मा देखते हैं, पत्नी अपने पति को आत्मा देखती है, भाई उसको भी भाई के रूप में महसूस करती है, अपने बच्चों को भी भाई रूप, भाई या बहन के रूप में महसूस करती है, राइट, महसूस करता है, अपने बॉस को, अपने साथियों को, आया को भी हम अपनी आत्मा रूप में भाई के रूप में महसूस करते हैं, उसके साथ में हमारा मीठा व्यवहार रहता है, पवित्रता आ जाती है, शांति, एकदम विचारों को पास को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, विचार एकदम कम हो जाते हैं, और बाबा के साथ कंबाइन होकर हर कर्म करते हैं, इसलिए जैसे बाबा को देखते बाबा सबको एक्सेप्ट करता है, जो बाबा को ग्लानी करते थे महिमा के दोनों को बराबर, बाबा आतंकवादी चोर डाकू हो ज्ञान में चलने वाला है बीके है, किंतु बीके चल के बीके बन के भी उल्टे सीधे काम करता है, और बीके और कई बीके इतने बढ़िया है एकदम, बाबा ने कल बताया 99% मार्क्स वाले और 10% परसों बताया था 10% मार्क्स वाले है, तो दोनों बीके, राइट, तो बाबा दोनों को बराबर प्यार से बात करता है, व्यवहार करता है, आओ दोनों को कहता है आओ बच्चे आओ मेरी गोद में संभालो, 10% वाले को ज्यादा करता है, आओ बच्चे आ जाओ अपनी कमी भर लो, कमी कमजोरी ठीक कर लो, मैं उत्साह से होता है। तो ये क्या है, हमारा प्यार, रूहानी प्यार पैदा, सच्चा स्नेह सब आत्माओं के प्रति, किसने मेरे प्रति कितना दुख दिया हो, धोखा दिया हो, इंसल्ट की हो, कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया हो, मेरा नंबर काट दिया हो किसी बात में, मुझे पीछे कर दिया हो, है ना, कुछ भी किया हो, कितना भी खराब किया हो, बल्कि उसका अधिक ध्यान रखते, उससे अधिक केयर करते हैं उसकी, इसको बोलते रहो सच्चा स्नेह। जब विश्व में सब सबके प्रति स्नेह हो जाता है तो हमारी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। दिल में जब बाबा आ जाता है, सच्चा स्नेह पैदा हो, जब दिल में हमारे बाबा आ जाता है, बाबा की मूल्य का साधन डिवाइस रियलाइज करते हैं, तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो उससे हमारे अंदर पवित्रता, शांति और सच्चा स्नेह पैदा होता है। इसको ही हम बोलते आत्मानिस्थिति। इससे हमारा सूक्ष्म शरीर अर्थात मन रूपी सूक्ष्म शरीर स्वच्छ होता जाता है। आज बहुत सुंदर मैंने अव्यक्त पालना का पॉइंट पढ़ा कि बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे ऐसे ट्रांसपेरेंट बन जाओ, अपने मन को इतना ट्रांसपेरेंट बना लो, क्योंकि मन सारे शरीर में फैला हुआ है, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, कि उसमें आत्मा स्पष्ट नजर आए। कितना सुंदर पॉइंट है, समझ में आया आपको? अगर मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरीज, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति ऐसी पॉजिटिव बना दो, इतनी बाबा की मुरली में ढल जाओ, बाबा की मुरली के विचार चल रहे हैं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं, सबके प्रति रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल है, और स्मृतियां सत्युग की स्मृतियां हैं, परम धाम की स्मृतियां हैं, आने वाली दुनिया की स्मृतियां हैं, बस ऐसी स्मृति बन जाए तो आपका क्या हो जाएगा, शरीर क्या बन गया, सूक्ष्म शरीर क्या बन गया, लाइट ट्रांसपेरेंट बन गया ना, अब आत्मा चमकती दिखाई दे सबको। संस्कार कैसे बन जाए, चार नियम चार मर्यादा में से ढल जाओ, क्या हो जाएंगे फिर हम, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता, सत्संग, बाबा और मुरली का संग, बस दो ही सत्य है सारा टाइम, बाबा और मुरली के अलावा कुछ और भी संकल्प में भी ना आए, ऐसी स्थिति बन जाए। शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक हो, कान का भोजन भी शुद्ध सात्विक हो, मुख का भोजन भी शुद्ध सात्विक हो, बाबा की याद में बना हुआ हो और बाबा सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, ऐसा मैं कुछ ना देखूं, ऐसा कुछ ना पढ़ूं जो बुद्धि को मलिन कर दे, ऐसा कुछ ना सुनूं जो मेरी बुद्धि को मलिन कर दे, सात्विक सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, भोजन भी मेरा ऐसा हो, पानी हो चाहे पानी भी पीना है और चाहे मुझे खाना भी खाना है, अपने बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, सातों गुण, ये पराठा पकौड़ा समोसा खाना है ना, मिठाइयां खाना, टोलियां खाना, बहुत सारी ये आलस पैदा करता है, अचार खाना, लहसुन प्याज मसाले, बहुत तेज मसाले लेना, ये बुद्धि में उत्तेजना पैदा करते हैं, अचार खाना उत्तेजना पैदा करते हैं, तामसिक पदार्थ है उत्तेजना पैदा करते हैं, है ना। शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुख का नहीं, आंख नाक कान मुख का, और फिर दैवी गुणों की धारणा, चार गुण बहुत आवश्यक हैं करंट खींचने के लिए, कौन कौन से, धैर्यता, गंभीरता और सत्य की समझ, आई ना एक मुरली करंट खींचने के लिए, धैर्यता, एकदम कुछ भी नहीं होता है, पेशेंस रखनी होती है, राइट, ज्ञान के भी एक बिंदु को बहुत गहराई से रियलाइज और रिवाइज करना होता है, गंभीर सीरियस होकर लगना पड़ता है, जैसे कोई काम सीरियस करते हैं ना, सीरियस होकर करते हैं, ड्यूटी पे जाना सीरियस होकर करते हैं, खाना सीरियस होकर खाते हैं, कभी यहां खाया कभी नाक में लगाया कभी कान में डाल दिया, ऐसे करते हैं, पानी कैसे पीते हो, सीरियस होकर पीते हो कि कभी थोड़ा नाक में चला गया थोड़ा मुंह में चला गया, ऐसे करते हो, सीरियस होकर करते हैं ना, नहीं करते, बताओ, याद में सीरियस नहीं होते, गंभीर होकर नहीं करते हैं ना, कर लिया नहीं किया कर लिया बस हो गया, कोई बात नहीं, और सत्य की समझ, पूरे ज्ञान की गहराई, उतर जाओ गहराई से, एक एक मुरली ऐसे डटी हुई हो, सारा दिन बजती रहे मुरली, इतनी मुरलियां पढ़ी हमने, सारी मुरलियां, बाबा ने उस मुरली में कहा था, बाबा ने वो मुरली में कहा था, बाबा ने ये कहा, बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा, बाबा ने इसके बारे में कहा, बाबा ने ये बताया, मैं ऐसा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, खुद को देखो, चेक करते जाओ, चेंज करते जाओ, ऐसी स्थिति बना दो। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाती तो हमारे अंदर जब हम तब तब जाके दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाती है, सबके प्रति स्नेह आता, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती, सूक्ष्म शरीर ट्रांसपेरेंट बनता जाता, और संस्कार संपूर्ण पवित्रता के, जितनी अधिक संपूर्ण पवित्रता उतना करंट आने लगती, जितना अधिक सत्संग में रहते निरंतर करंट आने लगती, जितना अधिक हम शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते आंख नाक कान मुख के द्वारा करंट आने लगती, और धैर्यता पेशेंस रखते, कभी जल्दबाजी नहीं करते, हमेशा गंभीर सीरियस होकर इस काम में लग जाते, और जितना हम अधिक सत्य की समझ गहराई से मूल्यों को रिवाइज रियलाइज करते, और फिर व्यवहार में सहनशीलता, कोई कुछ भी कर दे, तन में कुछ हो जाए, मन में, धन में कुछ भी हो जाए, उसको सहन करके संभाल लेना, राइट, उतना हमारा पावरफुल अमृत वेला होता, उतना अधिक हमारा मुरली में अटेंशन जाता, उतना अधिक हमारा क्या होता, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन होता, अर्थात अटेंशन रहता, और जो दिन में पुरुषार्थ करता उसका सोते समय बाबा को लेटर लिखने को दिल करता, अपना सच्चा सच्चा पोता मेरे दिल, बाबा आपने आपने ये कहा था ना बाबा, आपने मुरली में कहा ना आज मेरे को ये, मैंने ठीक किया ये गलत किया बाबा, ये मैं कर नहीं पाया, अपने तन मन संबंध संपर्क और सेवा में कुछ भी ऊपर नीचे हो बाबा को सब बुद्धि मन खाली करके लेटर में लिख देते, साइन करके, बाबा मैं आपको दे रहा हूं, मेरी एक आज कमजोरी ये थी, ये मेरी विशेषता ये रही, और बाबा बस अब मुझे आपके समान बनना है, आपको प्रत्यक्ष करना, ऐसे बाबा से बात करके फिर बाबा की गोद में सो जाना, ये है बाबा के चार मर्यादाएं और चार नियम। ऐसा जब हम करते तो ये हमारे संस्कार, ये संस्कार बन जाता, संस्कार सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है, ड्रेस जो बाहर दिखाई देती है, पवित्रता बाहर दिखाई देती है, सत्संग बाहर दिखाई देता है ना, दिखाई देता है ना, हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, दिखाई देता है, व्यवहार भी दिखाई देता है ना, हमारे जीवन में कितनी धैर्यता गंभीरता, हम सत्य की समझ कितनी करे में रहते हैं, और कितना सत्य, कितना धैर्यता गंभीरता है दिखाई देती है, कितना सहनशीलता है व्यवहार में दिखाई देती है, राइट, तो ये संस्कार के रूप में दिखाना है। तो सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया अभी हमारा, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई, मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, बुद्धि इंजन है, दिव्य बुद्धि इंजन है, मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में पहुंचा दिया, इसको विदेही स्थिति कहते हैं, वहां पे बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, मुख्य नौ संबंध, और जब सर्व संबंधों के हम महसूस करते हैं बाबा गोद में, कोई विजुलाइज नहीं कर रहे होते हैं, रियलाइज कर, रियल में महसूस हो रहा होता है, और प्रैक्टिकल व्यवहार में फिर बाबा को यूज करते हैं दिन में, तो बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, राइट, तो धीरे धीरे अनुभव की अथॉरिटी बनते बनते हमारे अंदर क्या आने लगता है, फिर सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, जब सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद आने लगती ना, वो तो आत्मा लवलीन होने लगती है, सर्व संबंध एक चले दो से एक की स्थिति में जाने लगते हैं, लवलीन माना जैसे मैं थोड़ी देर, इसको बोलते हैं आनंद की स्थिति, दो से एक की तरफ, एक से कम हुए ना, अब आ गई हमारी कौन सी अशरीरी स्थिति, पॉइंट नाइन, मतलब हम कहां पहुंच गए बात में, अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड हो गए, तो आत्मा देह में ही है, किंतु आत्मा मन बुद्धि से क्या हो गई, अशरीरी हो गई है, सूक्ष्म शरीर को भी समेट लिया है, मन बुद्धि को समेट के हम अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड हो गए, जब अशरीरी भाव से कंबाइंड होते हैं तो हमारे अंदर देहभान खत्म होता जाता है, राइट, देह अभिमान खत्म होता जाता है, देह विमान के संबंध संपर्क भूलने लगते हैं, देह विमान के पदार्थ की स्मृति अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है, ऐसा नहीं कि हम व्यवहार करना छोड़ देते हैं, देह बांध से देह के कर्म भोग, देह अशरीरी स्थिति ऐसे कह सकते हैं जैसे कि किसी का हम दांत, मैंने अभी कुछ दिन पहले डेंटल इम्प्लांट कराया और डेंटिस्ट ने मेरे को पहले इंजेक्शन लगाया दांत में ना, तो सुन कर दिया, फिर उसके बाद ड्रिलिंग की है ना, फिर इतना बड़ा इम्प्लांट होता है अंदर फिट करना होता है दांत जड़ में है ना, नॉर्मली तो दांत में थोड़ा सा भी करो कितना दर्द होगा, किंतु इंजेक्शन लगाया जाए भी फील नहीं हुआ, जब इंजेक्शन का असर वो दर्द फिर हुआ, राइट, तो कितना भी बड़ा कर्म भोग हो, हार्ट अटैक आ गया हो, घुटने खराब, कमर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द, माइग्रेन हो रहा हो, तो अशरीरी स्थिति क्या करती है, कर्म भोग को बुला देती है, जैसे हमने बेहोश कर दिया, देह से हम बेहोश हो गए, क्योंकि जब हम अशरीर स्थिति में होते, जब आत्मा जैसे डिटैच होती है तो आत्मा, तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल निकलते हैं, हम आत्मा मन बुद्धि से अशरीर स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, तो शरीर में क्या हो रहा है, ऐसे हार्मोन निकल रहे हैं, ऐसे केमिकल निकल रहे हैं, एंडोर्फिन एंड कैफेलिन निकल रहे हैं, नेचुरल मॉर्फिन निकल रही होती है, जो मॉर्फिन से मफीम से भी सोगना ज्यादा ताकतवर होती है, हम हमें दर्द महसूस ही नहीं होता, हमें तकलीफ और इतना हल्कापन महसूस जैसे उड़ रहे हैं। तो हमें कर्म भोग की अनुभूति सूली कांटा बन जाती है। ऐसे बॉडी में हमारे जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए ना, हमारे हॉस्पिटल में लेके आओ तो हम क्या करते हैं, 50,000 का इंजेक्शन लगाते हैं, 35 से 50,000 अलग अलग रेट के इंजेक्शन होते हैं। वो इंजेक्शन लगाते हैं, वो क्लॉट हमेशा हार्ट अटैक क्यों आता है, क्लॉट एक आर्टरी में क्लॉट बन जाता है, आर्टरी अंदर से क्रैक होती है, क्रैक होके गुस्सा करने के कारण जल्दीबाजी के सपने में हमें खतरनाक सपने आते हैं, डरावने सपने, गंदे सपने आते हैं, उसमें हमारी आर्टरी अंदर से क्रैक करती है ब्लॉक और रप्चर होके वो क्लॉट बन जाता है और उससे अचानक हार्ट अटैक आता है। और जो इंजेक्शन 35 से 50,000 रुपए का आता है, हमारे लीवर में वो इंजेक्शन बनता है कितने देर में बनता है? अगर आप पतिंदे सुख आनंद की स्थिति में हो तो आपका लीवर में वो इंजेक्शन वो जो केमिकल है 1 सेकंड में बन जाता है, यहां से निकला यहां जाके लग जाता है और अब क्लॉट अपने आप डिजोल्व हो जाता है। आया हार्ट अटैक गया 1 सेकंड में गया, भी क्लॉट डिजोल्व भी हो गया, राइट। हॉस्पिटल जाने में आधा घंटा लग सकता है, एक डॉक्टर देखे इतनी देर इंजेक्शन लगाए उसमें 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि ये तो तुरंत लगा ठीक हो गया। हमारे हार्ट के जो प्रोग्राम है ना CAD प्रोग्राम, ऐसे ही होता है। और पेशेंट को कई बार ऐसा हो भी जाए तो अपने आप ही ठीक कर लेते हैं, तो बड़ा वंडरफुल इफेक्ट होता है ना। तो ऐसे अशरीर स्थिति यही स्थिति है जिसमें आत्मा है पर देह से डिटैच है, अशरीर है माना देह से अलग है, आत्मा अलग है, देह का भान ही नहीं है, देह विमान नहीं है, देह संबंध संपर्क देह मन के पदार्थों का भान जरा भी नहीं है। तो इसे देह के कर्म भोग और देह विमान के कारण हिसाब किताब बनते हैं। मैं इंचार्ज हूं अपने डिपार्टमेंट का, तो मेरा जो बिहेवियर है लोगों के साथ हिसाब किताब बना ना, राइट। आप सेंटर में इंचार्ज हैं, घर में अपने अपने सभी अपने अपने घर के इंचार्ज हैं, देह विमान है ना ये, मैं पिता हूं, मैं कमा के लाता हूं, माँ कहेगी मैं इतना काम करती हूं, है ना, सबको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, देविमान हुआ ना, स्त्री पुरुष का भी देविमान होता है। तो ये जो अभिमान है इससे कारण हिसाब किताब बनते हैं, संबंध संपर्क से भी हिसाब किताब बनते हैं, और देविमान के पदार्थों के कारण जो प्रॉपर्टी है ना, लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे भी हिसाब किताब बनते हैं। तो अशरीर स्थिति से क्या होता है, इस हिसाब किताब को सहन करने की शक्ति आ जाती है, कर्म भोग को सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है। दुनिया में हम जब देविमानी होते हैं तो हम भी सहन करते हैं कि तो समा नहीं पाते हैं, बोलते रहते हैं, क्या पता आपको पता मैं कितना अंदर अंदर उबलते रहते हैं, सहन तो कर लिया डर के मारे, है ना, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा कि तो अंदर अंदर उबलते हैं। इसी से ब्लड प्रेशर होता है, इसी से डायबिटीज होती है, राइट, इसी से हार्ट की बीमारी, अंदर अंदर आर्टरीज ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक आते हैं, इसी से पेट में खाना नहीं पचता है, गैस बनती है, कब्जी रहती है, इसी से कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, सारी बीमारी इसी से, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना इसी से होता है। सहन तो कर लिया, समा नहीं पा रहे, जितनी मन और तन की सारी बीमारियां सहन कर लेते हैं, समा नहीं पाते हैं, इससे सारे रंग और होते हैं। समझ में आ रही है बात कि ऊपर से जा रही है, आ रही है नहीं आ रही है? इसी कारण होते हैं, कोई और कारण है? सहन तो कर लेते हैं, समा नहीं पाते, अंदर उबलते रहते हैं। उसने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे हो गया, ये बोलेंगे, उसको ये मिलेंगे तो ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करके दिखाएंगे, हम कम है क्या? तो किंतु अशरीरी बनने के अभ्यास से क्या होता है, हम अशरीरी बनने से सहन करने के साथ समाने की शक्ति भी आ जाती है। जैसे पानी में एक पत्थर डाला सागर में, दिखाई नहीं दिया, कहां गया पता नहीं, पत्थर एक पहाड़ भी डाल दिया तो वो भी दिखाई नहीं दिया, ना पानी का लेवल बढ़ा, चला गया कहां गया पता नहीं, इतना बड़ा जहाज समा गया पता नहीं लगा कहां गया, ऐसी समाने की शक्ति। क्योंकि प्रॉब्लम जिसने हमने साथ की है वो एक बार करके चुप नहीं होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संबंध हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक के बाद आती रहती, एक के बाद आती नहीं आती। तो सामना करने की शक्ति, जैसे वो आते हैं ड्रोन, आजकल अटैक ड्रोन अटैक करते हैं, एक ड्रोन के पीछे दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन, सीधे 500 ड्रोन एक साथ आ रहे हैं, है ना, एक के पीछे एक। हमारे पीछे भी बीमारी, कोई प्रॉब्लम है ना, एक के बाद आती रहेगी, एक प्रॉब्लम खत्म, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी के बाद पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, कई बार 10-10 प्रॉब्लम इकट्ठी आ जाती है, आती नहीं आती है, तो सामना करने की शक्ति, और जो तंग करे उनको सहयोग करने की शक्ति। सुना, उनसे हमें दुश्मनी नहीं पैदा करनी है। जो तंग करे ना, घर में करे, बाहर करे, कहीं भी करे, उनको सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमसे बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी, उनको भी सहन करना पड़ता है। माँ बाप को बच्चों को सहन तंग कर रहे हैं तो भी सहन करके समाना पड़ता है, और सामना भी करना पड़ता है उनकी प्रॉब्लम्स को, उनको सहयोग भी देना पड़ता है। कहना भी नहीं मानता तो भी सहयोग देना पड़ता है, नहीं होता है? इसको बोलते सहनशीलता। तो सहनशीलता की शक्ति आ जाती है, राइट? तो ये अशरीर स्थिति जो है हमको क्या करती है, अशरीर स्थिति योग है, याद है, तपस्या है, तपस्या नहीं है। तो अशरीर स्थिति में जितना हम अभ्यास करते जाते तो हमारे अंदर मैंपन मेरापन खत्म होता जाता है। कल भी बाबा ने कहा ना, सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है, हम परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते बताओ? क्योंकि हमारे अंदर मैंपन मेरापन होता है, और अशरीर स्थिति से मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है, राइट? मैंपन और मेरापन सारी प्रॉब्लम की जड़। बाबा ने क्या बताया, जब भी मैं शब्द आए तो सम्मान को याद करो, है ना, और जब मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा। कितने कितने सम्मान बाबा ने लिए, पर सम्मान कब याद आएंगे? जब हम अशरीरी बन के अशरीर स्थिति का अभ्यास करते, परम धाम कर, अशरीर भाव से कंबाइंड चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते इसका अभ्यास करते हैं। दादी जब 1976 में जब विदेश यात्रा से आई थी तो बाबा दादी ने कहा, देखो विदेश में इतनी, दादी ने एक मीटिंग किया, बड़ी दादी जी ने मीटिंग किया के भी, देखो इतने चारों तरफ इतने दुनिया में इतना दुख है, हमें विश्व को सकाश देनी चाहिए। तब 5 बार का ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया था, 10:30, 12:30, 5:30, 7:30 और 9:30 पांच बार का ट्रैफिक कंट्रोल तब बनाया गया था कि 3 मिनट अशरीरी बन जाओ, जो भी काम कर रहे हो एकदम डिटैच हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी भाव से कंबाइंड हो जाओ, ताकि सारे विश्व में दुख है, अशांति है, कर्मों के हिसाब किताब है, चुप्त हो जाए। तो जितना मैंपन मेरेपन का त्याग होता जाता है तो हमारा विश्व परिवर्तक बनने लगते हैं। तो मैंपन मेरेपन का त्याग होता है, चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय होने लगता है। चित्त हमारा शांत एकाग्र और आनंदमय, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता है, चित्त से चिंतन चलता है। अब आपने मुरली सुनी, क्या मुरली कितनी बार बजी मन में, मोटा मोटा याद, यही तो याद रहा होगा। बाबा ने कहा आज बहुत बार कहा, बाबा बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि और डिटेल काफी सारे पॉइंट थे मुरली में, आज का वरदान था, स्लोगन था, अब एक इशारा था, कितनी बार याद आया। तो वो जब हम गहराई से करते हैं तो हमारे अंदर जब मैपन मेरे पर त्याग, तो चित्त शांत हो गया, अब चिंतन चलता है, किसका? शांत एकाग्र आनंद में होंगे ना, आनंद का चिंतन चलेगा, शांति का चिंतन चलेगा, शांति एकाग्र, शांति सच्चे स्नेह की बात याद दिलाने वाली बातों की मुरली अंदर चलेगी, बाबा के मुरली के महावाक्य चलेंगे, राइट? तो इसमें मैंपन मेरापन और खत्म होता जाएगा, और मन में चिंतन शुरू हो, चेतन मन में चिंतन शुरू हो गया, ये इससे फिर निराकार स्थिति आने लगती है। तो मैंपन मेरेपन का त्याग ही तपस्या है। मैंपन मेरेपन का त्याग करते जाओ तो हमारी निराकारी अवस्था बनती जाती है। क्या बनती जाती है? निराकारी अवस्था बनती जाती है। तपस्या जीवन है, जीवन माना जिसमें मैंपन के त्याग में तप रहे हैं हम, जरा भी मैंपन, हर समय मैं सोमान याद रहते हैं बाबा की मुरली के, है ना, हर समय मेरा बाबा, भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा और बाबा के महीन सार वाली याद, लवलीन अवस्था रहती है, खोए रहते हैं हमेशा, एकदम देह का जरा भी भान नहीं, अतिंद्रिय सुख आनंद की स्थिति में ऐसे खोए रहते हैं, ऊपर बस उससे भी ऊपर ऊपर निराकार, आत्मा में देह का भान ही नहीं है, देह अभिमान ही नहीं है, देह अभिमान के संबंध संपर्क का भान नहीं, पदार्थों का भान नहीं है, और जैसे जैसे इस भान में रहते हैं, इस तपस्या में तपने लगते हैं दिन रात, ये दिन रात की तपस्या होती है, त्याग तपस्या सेवा, सुना ना ये बात? लास्ट के महावाक्य कहते हैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, लास्ट दिन के महावाक्य बाबा के, ब्रह्मा बाबा ने जब लास्ट दिन बताए, तो जितना जितना हम त्याग करते मैंपन मेरे, हमारी निराकारी अवस्था बनती जाती है, और निराकारी अवस्था बनके निराकार भाव से निराकार वतन में कंबाइंड रहते हैं तो हमारे निर्विकारी बनते जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वेग, इनका वेग होता है, काम विकार का भी वेग होता है, क्रोध का भी वेग बहुत अंदर से जबर से जोर से आता, सामने वाला गुस्सा करता, हमें भी दिल करता, हम भी ऐसे अपने आप ही कंट्रोल नहीं होता है, होता नहीं होता, कुछ हमारे हिसाब से आता ना, जोर से गुस्सा आता नहीं आता। लोभ का भी वेग होता है, बहुत तेजी से आता है। मोह का भी वेग होता है, अहंकार का भी वेग होता है। इसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। अंदर से इंपल्स आ रही है, ऐसे करूं ऐसे कर दूं मैं, नहीं, ठंडा हो जाएगा, सहन कर लिया, सहन करके समा भी लिया, और भी आए जा रहा है, सामना कर दिया और उसको सहयोग भी दे दिया, सामने वाले को नाराज भी नहीं किया। कोई गुस्सा कर रहा है मेरे को, मैं बस गुस्से करने में, हाँ बेचारा बहुत देर गुस्सा करते करते पानी लिया, भाई साहब थोड़ा पानी पी लो, बीच में थक जाओगे, बैठ जाओ, है ना, सुना, बैठ जाओ, बाद में कर लेना, अच्छा मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं ऐसे कर लूंगा, जैसे आपको मैं ऐसे ही कर लूंगा, मैं तैयार हूं करने के लिए। उस समय तो उसका ठंडा करो ना गुस्सा, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा। इसको बोलते सहयोग करना। तो ऐसे करते करते निर्विकारी बनते जाते हैं। तो निराकारी से निर्विकारी बनते, पांच विकारों पर विजय किससे होती है? निराकारी स्थिति से। आपने देखा होगा कई लोगों को 40 साल हो गए, 50 60 साल भी हो गए, अभी तक भी काम तो खत्म हो गया, कामनाएं खत्म नहीं हुई है, इच्छाएं अभी बहुत है, अभी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे? क्रोध तो खत्म हो गया है ना, मोटा मोटा है, पर उसका आज भी क्रोध का रूप दिखाई देता, रोग के रूप में दिखाई देता है ना। मोह तो खत्म हो गया है, किंतु आज भी कुछ तो अंश दिखाई देता है ना। अहंकार भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, रॉयल अहंकार आ गया है ना। मैं निमित्त हूं, निमित्त का भी अहंकार आ गया, मैं निमित्त हूं ना, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है ना, ये भी तो अहंकार आ गया, नहीं आ गया? मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, भी तो अहंकार आ गया, नहीं आ गया? मैं कभी अमृत मुरली मिस नहीं किया, ये भी तो अहंकार ही हो जाते हैं। मैंने इतने कोर्स कराए, इतने क्लासेस कराए, इतने देशों में टूर किया है, ये भी तो अहंकार आ जाता है, नहीं आता है? तो ये जो है हमारे अंदर से खत्म हो जाए, ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, ऐसी गहरी स्थिति आ जाए। तो पांच विकार तब भस्म होते हैं। जब तक मैंपन मेरेपन का त्याग नहीं किया है, निराकारी अवस्था नहीं बनती है, और निराकारी जब तक अवस्था नहीं बनती है, तब तक निराकारी आत्मा बनकर निराकार बाप से कंबाइंड नहीं होते हैं, तो हमारे क्या नहीं भस्म होते हैं, पांच विकारों पर विजय नहीं होती है। यस, तो बिना निराकारी बने, निराकारी में क्या स्थिति है? निराकारी में मैं आत्मा, बस निराकार आत्मा, निराकारी बाप से कंबाइंड। इसलिए बाप का निराकारी का गायन है, अशरीर का गायन नहीं है। भक्ति मार्ग में उसको अशरीर नहीं कहा गया, क्या कहा गया? निराकारी, निराकारी शिव बाबा, अशरीर ही नहीं कहा गया। ये तो बाबा शिव बाबा जैसे बच्चा होता है ना, बाप होता है ना, छोटा बच्चा है, कंधे पे बिठाएगा तो वैसे भी ऊंचा है ना, सिर पे बिठा दे तो कितना ऊंचा है ना। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ देवीमानी भी बनता हूँ, ब्रह्मा बाबा के साथ, और आत्ममानी भी बनता हूँ, और विधेयी भी बनता हूँ, और अशरीरी भी बनता हूँ, निराकारी भी बनता हूँ। है तो बाबा बीज रूप है ना, पूरे कल्प का कल्प का बीज है ना ऊपर, कि तो हमें छोटा बन के दिखा देता है, जैसा ना दुनिया वालों के लिए नहीं है, दुनिया वालों निराकारी और बीज रूपी है, हमारे लिए दैयमानी आत्ममानी विधेयी अशरीरी बन के दिखाता है, निराकारी है तो बीज रूप, राइट? तो निराकारी बनेंगे तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जितना निराकारी बनता जाए, निर्विकारी बनते जाते हैं, उतना क्या होते जाते हैं, उतना हमारी सेवा शुरू हो जाती है। निर्विकारी आत्मा जिसमें पांचों विकारों का अंश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश है, काम विकार और कामना को छोड़ते हैं तो लाइट का ताज आता है। क्रोध लोभ मोह और अहंकार के अंश को छोड़ते हैं तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आता है, तभी विश्व कल्याण कर सकते हैं, तब सेवाधारी, तब हमारी बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, ये सेवा नहीं होती है। दादी गुलजार कहा करती थी कि मिसाइल मान लीजिए हमने बनाया 1000 किलोमीटर दूर का, हम अमेरिका में सेवा के आकाश पहुंचा रहे हैं, दादी कहती है तुम्हारा मन तो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं, तुम्हारा मन तो तुम्हारा, तुम तो अपने मन की सेवा तो कर नहीं सकते, दूसरों की सेवा क्या करोगे? तुम्हारी चाय पीने की इच्छा हो रही है, चाय तो तुम्हें पीनी है, तुम्हें तो समोसा खाना है, समोसा खाना है, तुम्हारा मन तो मानता नहीं है, तुम सेवा क्या करोगे। मैंने मिसाइल डाला, यहां से निकला और ये जाना था 1000 किलोमीटर, 10 मीटर पे गिर गया, तो क्या कहा? मिसाइल। जब एकदम दिल में बाबा है, सच्ची दिल साफ दिल है, तो विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है और चित्त शांत एकाग्र अन्नमय है, तो चिंतन बाबा की मुरली का चलता है, शुभ भावना शुभकामना सारे विश्व के लिए पैदा होती है, उससे वाइब्रेशन पैदा होते हैं, फिर उससे हमारी रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बनता है, उससे फिर वाइब्रेशन फैलते सारे विश्व में, तब सेवा होती है। जब मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें के कर्म करता हूं, तो मेरे चेहरे और चलन से बाबा प्रत्यक्ष होता है, राइट? तो ऐसी स्थिति मेरी बनी है। तो ये है, जब ऐसा भेद की सेवा होने लगती है ना, त्याग तपस्या सेवा, तपस्या से हम निर्विकारी बनते हैं और फिर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, जिससे दुआओं का खाता जमा होता है, तब हम निरहंकारी बनते हैं, राइट? तब हमें लगता है करावन हार शिव बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, तो हम निरहंकारी बनते जाते हैं, तब नष्टो मोह स्मृति लब्धा की स्टेज आती है, तब ऐसी स्थिति आती है, तो इसको बोलते हैं मास्टर बीज रूप स्थिति। तब हम बाप समान बन जाते हैं, तो मास्टर बीज रूप स्थिति क्या है, एकदम आत्मा सर्वगुण संपन्न बनती जाती है, और प्रैक्टिकल जब हम ऐसे स्थिति में कर्म करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग होती जाती है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सच्चा स्नेह स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और सर्वशक्ति स्वरूप बन जाते हैं। आत्मा जब सातों गुणों से भरपूर हो जाती है, सत्व प्रधान बनती जाती है, तब हम बाबा से कमांड होकर और कर्म करते हैं, निराकारी बनकर कर्म करते हैं, निर्विकारी बनकर कर्म करते हैं, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधन बनने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे चेहरे चलन के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होता है, प्रत्यक्षता दैवी व्यवहार, दैवी आहार और दैवी विहार होने लगता है। तब हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, तब हम कर्मेंद्रिय हमारे वश में, मन बुद्धि संस्कार और 5 कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि बीज रूप स्थिति क्या है, पावरफुल स्थिति है, बहुत पावरफुल बाप समान स्थिति है, और माया जीत हमारे, हम माया जीत बन जाते हैं, 5 विकार अब हमारे फुल कंट्रोल में आ गए, और प्रकृति जीत माना शरीर के 5 प्रकृति के तत्व हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, और विकर्मा जीत, विकर्म होने बंद हो जाते हैं। अभी तो हम 2 घंटा योग किया, बाकी 22 घंटा क्या हुआ, 22 घंटे तो हमारे विकर्मी हो रहे हैं ना, बाप को भूले हैं तो विकर्म भी हो रहे, नहीं हो रहे, तो विकर्म नहीं, विकर्म खत्म नहीं, खत्म होने चाहिए ना, तब कर्मातीत बनते हैं, तब उसके बाद हमारी लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति बनती है, 7 एनर्जी की लाइट, 6 एनर्जी ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा सच्चा स्नेह, अतिंद्र सुख, आनंद की लाइट और 8 शक्तियों की माइट। तो ये मास्टर बीज रूप स्थिति, जब मास्टर बीज रूप बन के मास्टर बीज रूप बाप से, बीज रूप बाप से कंबाइंड होते हैं, तो सारे कलेश को सकाश पहुंचता है, और ये सकाश क्या करता है, हमारे आसुरी संस्कारों को भस्म कर देता है। मैं जागृत हो जाता हूं, जैसे बताया ना, अलर्ट और एक्यूरेट। आसुरी संस्कार क्या था मेरा, आलस्य और अलबेलापन। जब मैं जाग गया, मुझे सारे विश्व की आत्माएं, 810 करोड़ आत्माओं का कल्याण करना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सबके गुण देखने हैं, गुणों में व्यवहार देख, किसी का गुण दिखा, बाबा को किसी का गुण दिखाई नहीं देते हैं, बाबा को सब आत्माएं दिखाई देती हैं, वहम दिल, निश्चय और विश्वास, हर बच्चे में विश्वास, निश्चय, बाबा का हर बच्चा क्या है, महान, VVVVIP है, कल बाबा ने बताया ना, सबसे बड़ा VIP कौन है, सबसे महान हम है ना, महानतम है ना हम बाबा के बच्चे, बाबा ने कहां चुना है, 810 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख बच्चों को, 10-12 लाख बच्चों को चुना है, तो हम वो बच्चे हैं जिनको बाबा ने चुना है, तो ऐसा नशा अंदर से, और फिर बेफिक्र बादशाह, निर्भय और धैर्यता और विश्व कल्याणकारी की स्थिति, ये मास्टर बीज रूप स्थिति है। हमारे आसुरी संस्कार भी भस्म हो जाते हैं और उनके 100 बाल बच्चे भी भस्म हो जाते हैं। तो विवाह, तो जब हम कलवृक्ष बाबा के साथ कंबाइन होकर सारे कलवृक्ष को सकाश, शक्ति उत्तरेता द्वापर कलयुग की सभी आत्माओं को, जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता है पानी, 7वें एनर्जी का पानी मिलता है, सत्यु की आत्माओं को भी जो भी बन रही हैं, कमजोर हैं, 108 रत्न जो पूरे बाबा ने आज दीदी ने कहा ना जयंती दीदी ने 108 रत्न भी अपनी आखिरी तैयारी पे, 8 तो प्रत्यक्ष हो गए और अभी 108 की थोड़ी तैयारी बाकी है, वो भी कार्य तैयार होने लगता है। 16,108 भी तैयार होने लगते हैं, 9 लाख में परफेक्शन आ जाती है। रॉयल पवित्रता चाहिए ना 9 लाख की भी, तो ऐसे थोड़े सत्यु के पहले जन्म में फर्स्ट स्टेज में हम आ जाएंगे, फिर सत्यु के त्रेता के अंत तक 2 करोड़ और अभी कलयुग के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता घराने की आत्माएं, उन सबको उन सबकी कंप्लीट स्टेज आने लगती है। बाकी 800 करोड़ को बाबा का मैसेज मिल जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बनता है, क्योंकि सब रोगी हैं इस समय, सबको हेल्थ का वरदान मिलने लगता है कि स्वस्थ माना स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, आत्मिक स्थिति में स्थित होना ही है, उसके लिए परमात्मा पिता को याद करना ही है। पावर हाउस से अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो अपने तन मन के सारे रोग खत्म होते जाते हैं, सारी आत्माएं उसको याद करती हैं। ऐसे हमारी अशरीर स्थिति के द्वारा फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अशरीर स्थिति से क्या होता है हमारा, क्या होता है बोलो, देह के कर्म भोग और देह विमान के संबंध संपर्क और देह विमान के हिसाब किताब चुक्त होते जाते हैं, मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है। और जब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है निराकारी अवस्था बनती है, हम निराकारी आत्मा मन के निराकार बाप से कंबाइंड होते हैं। इसी को तपस्या, तपस्वी जीवन माना, जिसमें ना मैंपन हो ना मैं मेरापन हो, ऐसी स्थिति से फिर हम निराकार निर्विकारी बन जाते हैं, अर्थात 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भस्म होने लगते हैं। रिटर्न जर्नी है ना हमारी, 83वां 84वां जन्म, पहले ब्राह्मण जन्म में कुछ हुआ हो, 83वां 82वां 81वां अवस्था ऊपर नीचे होती है, किंतु हमारे धीरे धीरे विकर्म विनाश होते चले जाते हैं, सारे हमारे ये 5 विकार भस्म होते जाते हैं। इसी को पाप कर्म कहते हैं, 5 विकारक वश के कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, और देवभान के देव विमान के वश किए हुए कर्म, देव विमान संबंध संपर्क पदार्थों के वश किए हुए कर्म वो विकर्म कहलाते हैं, राइट। और फिर लास्ट में जब हम मास्टर बिजली बन के सारे कलमेश को सकाश दे रहे होते हैं तो हमारे जो आसुरी संस्कार भस्म हो जाते हैं। एक था स्लोगन था, 4-5 दिन पहले की मुरली में स्लोगन था, बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो, मास्टर बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो तो आसुरी संस्कार खत्म हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये तीनों स्थितियों से हमारे हम एकदम परफेक्ट स्थिति में आ जाएंगे। हम कौन सी स्थिति में, रजो प्रधान पहले सत्युग, तमो प्रधान तमो, फिर तमो फिर रजो, रजो प्रधान से रजो और रजो से सतो, सतो माना अब 20वें जन्म में आ गए हम, त्रेता के जन्म में आ गए, तो हमारे स्टेज ऐसी, फिर हमको देवी देवताओं से हमारे हमें साक्षात्कार होने लगते हैं, किसके, सत्युग के, त्रेता युग के शुरू में और फिर बाद में सत्युग के। तो जब विनाश शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, हम यहां रहते भी सत्युग में होते हैं, वहां वास कर रहे होते हैं, अपने महलों में घूम रहे होते हैं, क्योंकि जब वो फाइलें कब खुलेंगी, वो फाइल तब खुलेगी जब हमारे तहसील उनके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, फिर साक्षात्कार होते होने लगेंगे हम आत्माओं को, राइट। यहां बैठे बाहर हाहाकार हो रही होगी हमारे अंदर मन में, खुशी के बाजे बज रहे होंगे, वो कहेंगे हाय हाय मरा, हम क्या बोलेंगे, वाह मैं सत्युग में गया, अपनी राजधानी में गया। बाबा ने कहा खुशी के घुंघरू पहन के नाचेंगे हम, बस नाचेंगे सभी, यस नो। तो जैसे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे तो इसलिए बार बार याद रखना है अशरीरी निराकारी और बीज रूप, पर इसके लिए निरंतर श्वासों श्वास हर सेकंड हर संकल्प पर श्वास में क्या करना है, देह मन स्थिति का अभ्यास करना है। दिल में बाबा को बिठा के, एक गीत है ना फिल्म का, कौन सा गीत है, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूं मैं ये आंखें, पूजा करूं मैं तेरी, होके रहूं मैं तेरी। दिल में बाबा को बिठा के फिर क्या करूं, इस दुनिया से आंखें बंद कर लो बस, फिर मैं और तू बस, कोई और नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, यही देह मन स्थिति है। उससे आत्म मन स्थिति पवित्रता साक्षी स्थिति, पवित्रता शांति और सच्चा स्नेह आएगा, दिव्य बुद्धि रूपी रिफ्लेक्टिव हो जाए, सूक्ष्म तन में पहुंच जाओगे, विदेही बन जाओगे, अत्यंत स्वानंद की अनुभूति करेंगे, फिर आसे परमधाम। अशरीर स्थिति माना 0.9 से कम, 0.1 तक की स्थिति होती है अशरीर स्थिति, फिर 0.1 से लेकर 0.0001 तक होती है निराकार स्थिति, और 0000 से भी आगे चले जाओ तो उसे बोलते हैं शिव बाबा 0.0000 है, और हम क्या है 0.0001 हो जाएंगे तो बाबा से बीज रूप स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब हम मास्टर रचता बन जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बनेगी। ओम शांति। सभी अलर्ट होके एक्टिव होके बैठ, सीधे होके बैठ जाओ। अभी हम करेंगे देही मन स्थिति से शुरू करेंगे, आत्मा स्थिति का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, फिर बनेंगे क्या विदेही, बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करेंगे, वहां से हम लवलीन अवस्था का अनुभव करेंगे, वहां से विदेही बन जाएंगे, वहां से बन जाएंगे अशरीरी, फिर मैपन मेरेपन का त्याग करेंगे तो निराकारी, और निराकारी से फिर ब्लास्ट में बीज रूप बना। चलिए चलते हैं, अलर्ट होकर बैठ जाओ, कमर सीधी गर्दन सीधी रख के बैठो, तो महसूस करो अपने दिल में बाबा को, महसूस करो मेरे मीठे शिव बाबा, मीठे ब्रह्मा बाबा द्वारा, कुछ भाई बहन भी, भाई भी इधर आ सकते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, अर्थात मेरे दिल में अब कौन आ गया है, सत्य की समझ का सागर, पवित्रता का सागर, महसूस करो सत्य की समझ अर्थात ABCD का सागर, अंदर महसूस करो उसको, रिवाइज और रियलाइज करो दिल में, पवित्रता का सागर अर्थ सहित उसको महसूस करें। शांति का सागर, सच्चे स्नेह का सागर, उसे अपने दिल में रिवाइज करो, रियलाइज करो, मेरे दिल में बाबा सच्चे स्नेह का सागर बैठा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सत्य को परखने की शक्ति का सागर, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर अर्थात दिव्य बुद्धि का सागर, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर, समेटने की शक्ति का सागर, अशरीरी स्थिति का सागर, निराकारी स्थिति का सागर, बीज रूप स्थिति का सागर, सहन करने की शक्ति का सागर, अर्थ सहित महसूस करो कितना सहन करता है बाबा, सागर है सहन करने की शक्ति का, समाने की शक्ति का सागर है, मेरे दिल में है, सामना करने की शक्ति का सागर मेरे दिल में आ गया है, खो जाओ उस सागर में, समा जाओ उस सागर में, सहयोग करने की शक्ति का सागर, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर, हीलिंग एनर्जी का सागर, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि का सागर, अंदर दिल में रिवाइज करो, स्मृति को इमर्ज करो, मैं दिल में कौन बैठा है, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि का सागर बैठा है, उस बाबा के महावाक्य, उस बाबा की मुरली, एक एक महावाक्य मेरे दिल में समाया हुआ है, मेरी दिल बिल्कुल सच्ची और साफ है, जिसमें शिव बाबा के सिवा कोई और दूसरा नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। समा जाओ स्मृति में, खो जाओ इस अनुभूति में। दिल से ये एनर्जी, सातों एनर्जी का सागर बुद्धि, मन और संस्कारों में समाता जा रहा है। मुझे आत्मा, मैं आत्मा इस सागर को समाये हुए अपने इस शरीर को पोषित कर रही हूं, मन के विचारों, भावनाओं के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से। हर कोशिका में ये सातों एनर्जी व्याप्त हो रही है। हम दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र एक्टिव हो गया है। आज की मुरली के महावाक्य, बच्चे मुझे प्यार से याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसी को रिवाइज और रियलाइज करो सच्चे दिल से, महसूस करो। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हुए इससे पवित्रता की एनर्जी, जितना जितना मैं बाबा से कंबाइंड होती हूं आत्मा, उतना पवित्रता की एनर्जी मुझे आत्मा पैदा हो रही। अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप स्मृति में इमर्ज हो गया है। अब मैं आत्मा ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, काम विकार के साथ साथ क्रोध लो मोह अहंकार से भी परे, और आसुरी संस्कारों से भी परे, ब्रह्माचार्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता, महसूस करते जाओ। सत्संग, बाबा और मुरली का संग, शुद्ध सात्विक भोजन, दैवी गुणों की धारणा, संगम का हर सेकेंड अमृत वेला है, सर्कल से संगम का हर सेकंड मुरली अंदर बसती रहे, संगम के हर सेकंड में मुरली रिवाइज रियलाइज होती रहे, और हर सेकंड बाबा से पोता मिल लेते देते रहे। महसूस करते जाओ अब सच्ची शांति अंदर, महसूस करो वर्तमान में हूं मैं आत्मा, बस मैं और मेरा बाबा, बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करती हूं। बाबा के संग कर्म करते करते ये रियलाइज होता है कि हर आत्मा एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है और हर आत्मा को उसके हर रोल में दिल से सम्मान के साथ स्वीकार करके उसकी पालना करते हुए रूहानी स्नेह सब आत्माओं के प्रति प्रकट हो गया है। जिससे मेरा सूक्ष्म शरीर एकदम लाइट से भर गया है, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, सच्ची शांति की लाइट, सच्चे स्नेह की लाइट। इससे दिव्य भूति रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई है जो मुझ आत्मा को मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। बाबा मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, आ जाओ मेरी गोद में, समा जाओ। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस ज्ञान सागर में समा जाती हूं, बाप दादा रूपी ज्ञान का सागर उसमें समा जाती हूं, शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, महसूस करो, इसको विजुलाइज नहीं करो, महसूस करो कि महात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा के सूक्ष्म शरीर, शिव बाबा और ब्रह्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं जाके उसमें समा गई हूं, ज्ञान सागर में समा गई हूं। पवित्रता के सागर में समा गई, महसूस अर्थ से महसूस करो पवित्रता क्या है, लगाओ झुकाओ प्रभाव टकराव से परे, क्या क्यों कैसे से परे, क्रोध लो मोह अहंकार से परे, आलस्य अलबेलेपन से परे, चिंता भय से परे, आसुरी संस्कारों से परे, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी स्थिति में उस सागर में मैं समा गई हूं। ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा, एवर प्योर परम पवित्र परमात्मा उस सागर में समा गई, महसूस करो उसी सागर में समा जाएगा। शांति के सागर में समा गई, विचारों से परे, बाबा से कंबाइंड, सच्चे स्नेह से परे, सच्चे स्नेह के सागर में समा गए, रूहानी स्नेह के सागर में समा गए। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, सबसे न्यारा, सबका प्यारा, जैसे शिव बाबा सबसे न्यारा सबका प्यारा, ब्रह्मा बाबा सबसे न्यारा सबका प्यारा, ऐसे ही मैं आत्मा सबसे न्यारी सबसे प्यारी सबकी प्यारी, यही अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, यही विदेही स्थिति है। देह में रहते मैं आत्मा इस देह की सभी कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार, मन की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और देह की सभी कर्मेंद्रियां, हर एक अंग पे पूरा मेरा कंट्रोल है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है, विधेही। अब बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर लो, एक एक संबंध की गहराई में चले जाओ। बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा मां के रूप में हमें दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये दो गिफ्ट हमें देते हैं। शिव बाबा बाप के रूप में हमें त्रिनेत्री बना देते हैं, जिससे सातों एनर्जी का वर्षा मुझ आत्मा को मिल जाता है। महसूस करो सातवें एनर्जी से भरपूर अवस्था को। मां के रूप में दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, बाप के रूप में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से आत्मा भरपूर, बैटरी चार्ज, फुल चार्ज, तमो प्रधान से सतो प्रधान। टीचर के रूप में सुदर्शन चक्रधारी अर्थात त्रिकालदर्शी, सतगुरु के रूप में मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान, गति सदगति का वरदान, था त्रिलोकी नाथ, साकारी आकारी निराकारी स्थिति की ड्रिल। जब चाहे मैं आत्मा सूक्ष्म में जा सकती हूं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जब चाहे मैं आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बन के जा सकती हूं अशरीरी बाप से कंबाइंड, जब चाहे निराकारी और जब चाहे बीज रूप बन के मास्टर बीज रूप बन के का सारे क्रमश को सकाश देते। ये सतगुरु का वरदान है, मुक्ति जीवन मुक्ति। जब चाहे मैं आत्मा सुख धाम में अपने महल में जा सकती हूं, बंधु के रूप में बाबा सदा मेरे साथ है और मेरे सारा लौकिक अलौकिक बोझ को हर लेता है। बंधु के रूप में बाबा कहता है सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। सखा के रूप में बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जो भी तुमसे जाने अनजाने पाप कर्म हो गए हो, कुछ गलतियां हो गई मुझे बता दो। एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाओ। फिर बाबा मेरा साजन बन जाता है। साजन अर्थात सजाना। साजन के रूप में बाबा मुझे सर्वगुण सजा देता है, सर्वगुण संपन्न बना रहा है। एक एक गुण 36 गुणों को एक एक गुण को अंदर देखो कैसे बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है। सर्जन के रूप में बाबा रिटर्न जर्नी पर सदा मेरे साथ रहता है। भिन्न भिन्न जन्म में जो कमजोरियां आती हैं, बाबा सर्जन बन के उन सभी कमजोरियों को निकालता जाता है। सर्वगुण संपन्न से 16 कला संपूर्ण बना देता है। सर्जन बनाता है सर 16 कला संपूर्ण, अर्थात हर गुण में परफेक्ट 100% संपूर्ण निर्विकारी बना देता है, अर्थात आलस्य अलबेलेपन से मुक्त, चिंता भय से भी मुक्त, जल्दबाजी से भी मुक्त, ईर्ष्या द्वेष से भी मुक्त। और जब ऐसा मैं बन जाता हूं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा ने जो मर्यादा और नियम दिए उसमें 100% पुरुषोत्तम बन जाता हूं, अहिंसा परमो धर्म बन जाता हूं, तब बाबा मेरा बच्चा बन जाता है। जहां जीत वहां जन्म। ये सब अतिंद्रिय सुख के झूले हैं, इन झूलों में झूलो। मां के रूप में दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान गिफ्ट, बाप से वर्षा, टीचर से त्रिकालदर्शी, गुरु से त्रिकाल त्रिलोकी नाथ की ड्रिल, बंधु से सारा बोझ दे दिया हल्के हो गए, सखा को सब राज बता दिए डबल लाइट हो गए, साजन ने सजा दिया सर्वगुण संपन्न बन गए। बनते जाओ। और सर्जन ने मुझे एकदम 16 कला संपूर्ण बना दिया, संपूर्ण निर्विकारी बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रिटर्न जर्नी पर मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बना दिया, अर्थात अहिंसा परमो धर्म अर्थात काम के साथ कामना को भी छोड़ा, लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार और इसके बाल बच्चों को भी छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। इसी में समा जाओ। सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, लवलीन स्थिति, नदी सागर में समा के सागर बन गई। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन से भी परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन, अशरीरी बन करके अशरीरी बाप से कंबाइन हो जाती हूं। अपने सूक्ष्म शरीर को समेट के मन बुद्धि को भी समेट अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन। तो देह के कर्म भोग, देहाभिमान के हिसाब किताब, संबंध संपर्क और पदार्थों के हिसाब किताब से को सहन करने की शक्ति आ जाती है। देखो मुझे आत्मा में सहन करने की शक्ति आ गई है, ऐसे केमिकल पैदा हुए हैं मेरे शरीर में, ऐसे हार्मोन निकल आए हैं जिससे अब देह के कर्म भोग मुझे सूली से कांटा बन गए, बनते जा रहे, हिसाब किताब महसूस ही नहीं हो रहे। ऐसा ब्रह्मांड मेरे साथ आ गया है, मेरे आसपास चारों तरफ एनर्जी जमा है पवित्रता की, शांति की, सच्चे स्नेह आनंद की। इससे मैंपन और मेरेपन का त्याग हो गया है। चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो गया है। अब चेतन मन में चिंतन चल रहा है बाबा की मुरली का, बस मुरली बज रही है अंदर, और मैं गोपी उसी मुरली की धुन में खो गई हूं। मैं मस्त हो गई हूं, मैं आत्मा मस्त हूं। इसी को निराकार स्थिति कहते हैं, जिसमें देह का भान भी नहीं, देह अभिमान का भान भी नहीं, संबंध संपर्क पदार्थों का जरा भी भान नहीं, मैंपन मेरेपन का बिल्कुल त्याग, निराकारी अवस्था। यही निराकारी स्थिति है। अब मैं निराकार बाप से कंबाइंड हूं, बस मैं आत्मा और निराकार बाबा, निराकार वतन। जिसे पांचों विकार का अंश भी समाप्त होता, निर्विकारी बनते जाते हैं, पांचों विकारों का वेग, उनको सहन करने की शक्ति आती जा रही है, समाने की शक्ति आ रही है, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति आ रही है। सातों एनर्जी का बैलेंस और हीलिंग एनर्जी पैदा हो रही है, ज्वालामुखी योग अग्नि पैदा हो गई, जिसमें मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनती जाती है। ऐसी संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, लाइट की ताजधारी और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी मैं आत्मा, ऐसी स्थिति में बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा सारे क्लब ऋषि कर पाती हूं, सभी आत्माओं को, विश्व की सब आत्माओं को, जो जैसी भी है, जिसको जो चाहिए, उस आत्मा को वह एनर्जी की महसूसता, उसको वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। ये ऐसी बेहद की स्थिति है, इसी को मास्टर बीज रूप स्थिति कहते हैं। मैं मास्टर बीज रूप, कलब ऋषि जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड, पूरे कलब ऋषि को सकाश दे रही हूं। सत्ययुग की रॉयल फैमिली की आत्माएं, साहूकार आत्माएं, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, दास दासी, सभी को सकाश, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं की सकाश, परमात्मा पिता से, बीज रूप बाप से, मुझ आत्मा से होती हुई पूरे सत्ययुग की सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। उल्टे झाड़ की जड़ में बाबा के साथ में बैठा हूं, मैं आत्मा बैठी हूं, सत्ययुग की सभी आत्माओं को सातों एनर्जी से भरपूर होती जाती है। त्रेता की सभी रॉयल फैमिली की आत्माएं, साथ साथ साहूकार, रॉयल प्रजा, रॉयल साधारण प्रजा और देवी दास दासी, सभी को एनर्जी पहुंच रही है। बस बाबा से कंबाइन, संकल्प नहीं करने होते, अपने आप ही एनर्जी पहुंचती है। ऐसा संकल्प नहीं करते हैं, अपने आप ही द्वापर की सभी आत्माओं को, त्रेता की सभी आत्माओं को वो एनर्जी, सभी आत्माएं अपने संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है। परम धाम में कोई संकल्प नहीं चलते हैं, ना संकल्प करने चाहिए, अपने आप ही स्थिति महसूस होती है। हम आत्माएं अलर्ट और एक्टिव एक्यूरेट होकर के, रहम दिल होकर, विश्व कल्याणकारी होकर सारे विश्व के सभी आत्माओं को सकाश देते। चलिए भी 15 मिनट हम सभी अशरीरी निराकारी और बीज रूप एकदम संकल्पों से परे की दुनिया का अभ्यास करेंगे। एक अभी बीच में कमेंट्री नहीं होगी और आप चले जाओ बस परम धाम में, एकदम निर्विकल्प स्थिति, निर्संकल्प स्थिति, निराकार स्थिति, अशरीरी निराकारी बीज रूप। हैं।